नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा ने दोनों देशों के बीच परस्पर संबंध मजबूत बनाए हैं।
भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावारीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा कर दी। मतदान 30 जुलाई को होगा और मतगणना 3 अगस्त को होगी। बांकीपुर सीट भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई है, जबकि दतिया सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण खाली हुई। इसके अलावा मंजलपुर सीट भाजपा विधायक योगेश भाई नरदास पटेल के निधन के बाद खाली हुई है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। सह मेजबान अमेरिका ने राउंड ऑफ 32 के मैच में आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हरा दिया। वर्ष 2002 के बाद नॉकआउट चरण में अमेरिका की ये पहली जीत है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।